हम कहीं नहीं जाएंगे। अब आगे, अचानक आस्था बोली। नानी माँ घूर कर आस्था को देखने लगी थीं। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही आस्था को समझाया था कि उसे अपने दिल के जज्बातों को इस तरह से सबके सामने नहीं लाना है, लेकिन अब आस्था के इस तरह के जवाब से नानी माँ तुरंत हैरान हो गई थीं। फिर सभी लोग मुंह खोलकर आस्था की ओर देखने लगे थे। आस्था भला अपना गांव जाने के लिए मना कैसे कर सकती है, जबकि आस्था जब से गांव से शहर आई थी उसने अपने गांव के इतने सारे किस्से सबको सुनाए थे जिनकी कोई हद नहीं थी। लेकिन आज अचानक से आस्था का इस तरह से गांव जाने से मना करना सभी को चौंका गया था, विशेष रूप से अरमान सिंघानिया को। अरमान आस्था के बेहद करीब था, लेकिन आस्था के चेहरे के हाव भाव इस वक्त अरमान को कुछ भी समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर आस्था क्या करना चाह रही है। और तभी रश्मि बोली, क्या हुआ है, तुम अपने गांव जाने के लिए मना क्यों कर रही हो? और हम सब तुम्हारे साथ गांव जाना चाहते हैं, और वैसे भी नानी माँ ने बताया था कि अगले महीने तुम्हारे माता पिता की बरसी है, तो तब तक हम सब गांव में ही रुकेंगे। हम पूरे 8 से 10 दिनों के लिए गांव जा रहे हैं और ये महीना ऑलरेडी पूरा होने वाला है, और अगले महीने तुम्हारे माता पिता का पिंडदान करने के बाद हम सब वापस आ जाएंगे। जैसे ही रश्मि ने ये बताया, आस्था मन ही मन में सोचने लगी थी कि हाँ, हम जानते हैं कि हमारे माता पिता की बरसी है, इसीलिए तो हम गांव नहीं जाना चाहते। अभी हमारे पास पूरे 15 दिन हैं, और 15 दिनों के अंदर अंदर हमें उस आदमी की जान अपने हाथों से लेनी है और उसके बाद अपने माता पिता का पिंडदान करना है। जैसे ही आस्था ने मन ही मन में ये सोचा, आस्था की आंखें अपने आप ही गुस्से से लाल होने लगी थीं। तभी दादाजी आस्था की ओर देखकर बोले, क्या बात है बेटा, आप कुछ परेशान लग रही हैं, बताइए आप क्या सोच रही हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम बाद में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपकी मर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही दादाजी ने ये बोला, आस्था बारी बारी से सबकी शक्ल की ओर देखने लगी। सब आस्था की ओर देख रहे थे, और विशेष रूप से अरमान। अब क्योंकि रौनक के लिए सब गांव जाना चाहते थे, तो इसीलिए आस्था को कुछ समझ नहीं आया और अचानक से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी को कोई जवाब नहीं दिया। तब रश्मि सिचुएशन को भांपते हुए बोली, मुझे लगता है कि अभी उसको आराम की जरूरत है, उसके बाद मैं उसे आराम से बात कर लूंगी, अगर कोई बात होगी तो वो मुझे बता देगी, तब तक आप सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम कीजिए। ऐसा बोलकर रश्मि ने सबको वहां से जाने के लिए कह दिया था, और एक एक करके सभी लोग वहां से चले गए थे सिवाय नानी माँ और अरमान के। तब अरमान ने नानी माँ की ओर देखकर कहा, नानी माँ, मुझे लगता है कि आपको भी जाकर आराम करना चाहिए, मैं हूँ आस्था के पास। तब नानी माँ बोली, अरे बिटवा, हम तो आराम कर ही लेंगी, हमने ये तेल बनाया है आस्था बिटिया के पैरों की मालिश के लिए, तो हम तब तक उसकी थोड़ी सी मालिश कर देती हैं। तब तक बेटा आप एक काम करो, आप अपने काम निपटा लो। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान ने केवल एक नज़र भरकर नानी माँ की ओर देखा और फिर वहां से उठकर चला गया था। अरमान के जाने के बाद आस्था ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली थी और नानी माँ की ओर देखकर बोली, क्या नानी माँ सब लोग चले गए हैं? तब नानी माँ ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाती थी। तब आस्था भड़कते हुए बोली, ये क्या किया नानी माँ, आपने अपने गांव जाने की बात क्यों बोली? हाँ, आप जानती हैं ना कि इस हालत में हम गांव नहीं जा सकते हैं, हमें सबसे पहले उसे ढूंढना है, और अब तो हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई है, हमें उसका सुराग क्लू मिला है, अब तो हमें बस सुमित भैया के होटल से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसके पते पर जाकर उसकी जान लेनी है, और 15 दिन है हमारे पास, और हम अपने माता पिता की बरसी पर उस आदमी को मौत के घाट उतारना चाहते हैं, और उसके बाद अपने माता पिता का पिंडदान करना चाहते हैं। आस्था उस वक्त बोलते हुए बड़े ही खतरनाक लग रही थी। तब नानी माँ ने आस्था के सर पर हाथ रखा और बोली, मेरे बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन बेटा तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हें अब खुद से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा। अगर इस तरह से तुम उसे डॉक्टर की जान लेने के लिए जाओगी, तो वो डॉक्टर कहीं तुम्हारी ही जान न ले ले, वो कितना खतरनाक है ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। अभी मुझे लगता है कि तुम्हें अभी सबके साथ गांव चलना चाहिए और ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग के साथ उस डॉक्टर पर वार करना चाहिए। अभी अगर तुम इस तरह से जल्दबाजी में गर्मा गर्म खाओगी तो तुम्हारी जबान चल जाएगी। जैसे ही नानी माँ ने अपनी भाषा में आस्था को समझाना शुरू किया, आस्था उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी, और कहीं ना कहीं उसे भी यही समझ में आया था कि उसे पहले गांव से होकर आ जाना चाहिए और उसके बाद ठंडे दिमाग से प्लानिंग करने के बाद आराम से उस डॉक्टर की जान ले लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया एम्पायर में अविनाश पहुंच चुका था, लेकिन क्योंकि अरमान सिंघानिया उस वक्त डॉक्टर के साथ बिजी था तो वो उसे नहीं मिल पाया था। अविनाश को बहुत तेज गुस्सा आया था कि कई सालों से सिंघानिया एम्पायर के लोग उसकी कंपनी के साथ डील करना चाहते थे, लेकिन अब जब खुद चलकर अविनाश रघुवंशी वहां गया है तो उन लोगों ने उसे टाइम देकर वो उसे मिलने ही नहीं आए।
अविनाश के गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था, इसीलिए अविनाश ने अब सीधा सिंघानिया मेंशन का रुख किया। अविनाश सीधा सिंघानिया मेंशन में आ धमका। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया को ये पता चला कि अविनाश वहां आया है, तब अरमान को एहसास हुआ कि उसके साथ मीटिंग थी, जिसके बारे में ऑलरेडी उसके सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म कर चुके थे। तब अविनाश उस वक्त सिंघानिया मेंशन के शानदार हाल में बैठा हुआ था। अब अरमान सिंघानिया भी उसके ठीक सामने बैठा हुआ था। अपने सामने अरमान को देखकर अविनाश करते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पता था कि आप में कमिटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपको मुझसे आज मीटिंग करनी ही नहीं थी तो मुझे मीटिंग का टाइम ही क्यों दिया था? मुझे लगता है कि आपके लिए आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरे टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है मिस्टर सिंघानिया। इसीलिए मैं आज यहाँ आपको साफ साफ ये बताने के लिए आया हूँ कि आज के बाद रघुवंशी एम्पायर आपके साथ किसी तरह की कोई डील नहीं करेगा। अविनाश की बात सुनकर अरमान को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन क्योंकि गलती उसी की थी तो इसीलिए अरमान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर अविनाश की ओर देखकर कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं मीटिंग के लिए नहीं आ पाया, लेकिन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है अगर मेरे लिए कुछ है तो वो सिर्फ मेरी बीवी आस्था अरमान सिंघानिया। आज मेरी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं मीटिंग के लिए नहीं आ पाया। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, अविनाश का गुस्सा एकदम से ही छूमंतर हो गया था, क्योंकि आस्था के लिए न जाने क्यों उसके दिल में एक अलग तरह का सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका था। और वो आस्था की परवाह जताते हुए बोला, ओ क्या आप मिसेस सिंघानिया ठीक हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अब जैसे ही अविनाश ने ये बोला, अरमान ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी ओर देखा, मानो वो उससे पूछना चाह रहा हो कि मेरी बीवी से तुझे क्यों मिलना है। लेकिन इससे पहले कि अरमान कोई जवाब देता, तभी आस्था नानी माँ के साथ वहीं आ रही थी। अब आस्था को वहां देखकर अविनाश उठ खड़ा हुआ और उसके हालचाल लेने लगा था। वहीं नानी माँ अविनाश को अपने सामने देखकर चौंक गई थी, क्योंकि अविनाश को देखकर उन्हें ऐसा लगता था मानो उन्होंने अविनाश को पहले भी कहीं देखा हो। अविनाश की आंखें उन्हें आस्था की आंखों का एहसास कराती थी। फ्लैशबैक, उस वक्त जब नानी माँ ने पहली बार अविनाश को मंदिर में देखा था,
तब भी उन्होंने आस्था की आंखों और अविनाश की आंखों को देखा था, और इसीलिए वो उनके मन में एक अंदेशा जाहिर हुआ था, जिसकी वजह से वो अविनाश से छुप गई थी प्रेजेंट। लेकिन आज अविनाश को सामने देखकर नानीमा पूरी तरह से हैरान हो गई और हकलाते हुए बोली, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये पूछते हुए नानीमा की जुबान लड़खड़ा रही थी। अब अविनाश हैरान हो गया कि अचानक से बूढ़ी औरत को क्या हुआ है। वो तो पहली बार इस औरत से मिला है, वो उसे देखकर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? तभी अविनाश के कोई जवाब देने से पहले आस्था बोली, अरे नानीमा, इनका नाम अविनाश जी है, ये बहुत अच्छे हैं, ये वही हैं जिन्होंने हमें मंदिर से सीढ़ी पर से गिरने से बचाया था, ये वही है, और अविनाश भैया ये हमारी नानी माँ है। आस्था ने जैसे ही बातों में अविनाश को भैया कहा, अचानक अविनाश की आंखों में नमी आ गई थी जो नानी माँ ने देख ली थी। वही नानी माँ ने आस्था को एक नज़र आस्था की ओर देखा, फिर अविनाश की ओर देखा, उनका शक यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा था। दोनों की आंखें काफी हद तक एक जैसी लग रही थी। रघुवंशी सरनेम सुनकर नानी माँ को एक अनजाना सा डर सता रहा था कि अगर अविनाश को ये पता चल गया कि आस्था ही उसकी बहन है तो वो तो आस्था को यहाँ से लेकर चल जाएगा और नानी माँ अकेली रह जाएंगी, और आस्था के अलावा नानी माँ का तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं। इसीलिए नानी माँ को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी सी महसूस होने लगी थी, और वो आस्था के कंधे पर हाथ रखकर जल्दी से बोली, गोरी बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हें बाकी सबसे बाद में मिलना चाहिए, अभी फिलहाल तुम चलो आराम करो। ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को वहां से लेकर जाने लगी। वहीं नानी माँ के मुंह से जैसे ही अविनाश ने गोरी सुना, अविनाश की आंखें हैरानी से फैल गई थी और वो तुरंत जाती हुई नानी माँ और आस्था के सामने जाकर खड़ा हो गया था। वहीं अरमान की भौहें तन गई थी कि आखिरकार इस अविनाश की इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से उसकी बीवी के सामने जाकर खड़े होने की। वहीं अविनाश नानी माँ की ओर देखकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, क्या कहकर बुलाया आपने इन्हें? अब जैसे ही नानी माँ ने ये सुना, नानी माँ हड़बड़ा गई और अनजान बनते हुए बोली, वो मैंने इसे आस्था कहकर बुलाया, क्या हुआ तुमने क्या सुना? अब जैसे ही नानी माँ ने सरासर झूठ बोला, आस्था हैरान हो गई और फिर अविनाश की ओर देखकर बोली, अरे वो अविनाश भैया, एक्चुअली नानी माँ हमें बचपन से ही गोरी कहकर बुलाती हैं। अब जैसे ही आस्था ने नासमझी में ये बताया, और अचानक अविनाश ने आस्था की ओर ध्यान से देखना शुरू किया और अविनाश ने नानी माँ की ओर देखा। नानी माँ हड़बड़ा सी ही थी, वो अविनाश को फेस नहीं करना चाहती थी। तभी नानी माँ ने आस्था के कंधों पर से पकड़ा था और बोली, बेटा चलो, तुम्हें आराम की सबसे ज़रूरत है, तुम मेहमानों से बाद में भी मिल सकती हो। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अविनाश घूर कर नानी माँ को देखने लगा था। कहीं ना कहीं नानी माँ के चेहरे पर उसे हैरानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। साथ ही साथ नानी माँ जिस तरह से हकला रही थी, अविनाश को ये बात हैरान कर गई। और जैसे ही नानी माँ जाने लगी, अचानक अविनाश एक बार फिर उनके सामने जाकर खड़ा हो गया था और नानी माँ के कंधों को पकड़कर बोला, बताइए आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? बताइए, प्लीज प्लीज बताइए, क्या मैं जो कुछ सोच रहा हूँ क्या ये वही है? प्लीज बताइए ना। अब जब अविनाश थोड़ा सा तेज आवाज में नानी माँ से ये बोला, जितने भी लोग थे सबके सब पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। वहीं अब अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने तो सोचा था कि वो अविनाश की जान नहीं लेगा, लेकिन अविनाश ने जिस तरह से आस्था को देखा था और अब नानी माँ से बात कर रहा था, तब अरमान को ये कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था और मन मन में अरमान उसे खौफनाक मौत देने के बारे में सोचने लगा। अब बार बार जब अविनाश नानी माँ से एक ही सवाल कर रहा था, बोलिए ना, प्लीज मुझे जवाब दीजिए, क्या ये वही है? बोलिए बोलिए ना प्लीज, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है? अब नानी माँ के भी सब्र का बांध टूट गया और नानी माँ ने तुरंत अविनाश के हाथों को झटकते हुए तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, ये वही है। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अविनाश ने तुरंत नानी माँ से नजर हटाकर आस्था की ओर देखा और फिर अविनाश ने आस्था की आंखों की तरफ देखा। अचानक ही अविनाश की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। वहीं एंजल काफी हद तक हैरान हो गई थी कि आखिरकार उसके खड़ूस बॉस को हुआ क्या है, वो इस तरह से मिसेस सिंघानिया को देखकर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। लेकिन तब तक कि एंजल कुछ समझ पाती या कोई कुछ समझ पाता, अविनाश ने बिना अरमानिया किसी और की परवाह किए तुरंत आस्था को गले से लगा लिया और रोना शुरू कर दिया था। अरमान पूरी तरह से चौंक गया था। इतना ही नहीं, पूरे के पूरे घर वाले उस वक्त वहां आ चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। अब अरमान सिंघानिया के सब्र का बांध टूट गया था। इस तरह से अपनी आंखों के सामने वो अपनी बीवी को किसी और के गले लगते हुए नहीं देख सकता था। आस्था को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है और ये मिस्टर अविनाश उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है और नानी माँ क्या छुपा रही हैं। लेकिन तभी तक अरमान अपनी बंदूक निकालकर अविनाश की तरफ बढ़ने लगा था।